सवाल ये है कि क्या अकायद में तकलीद ना होने के माना है कि जो चाहे अकीदा बना लें। इसको थोड़ा सा वही वाली बात है, हम पहले तो ये गौर करें कि अकायद में तकलीद है क्यों नहीं, अकायद में तकलीद क्यों नहीं है। देखिए, तकलीद जो है एक जन्नी चीज है, जोए से जन, जन्न गुमान जो आप कहते हैं, जो यकीन से नीचे का मरहला होता है, तकलीद एक जन्नी चीज है। दुरुस्त, यानी आप जब तकलीद करती हैं तो मैक्सिमम जो सूरत हाल होती है इस फतवे की वो ये होती है कि हम ये कसम नहीं खा सकते कि यही हुक्म खुदा है। अब मैं एक आमियाना ताबीर कर रहा हूँ समझाने के लिए, मैक्सिमम जो आप कह सकती हैं वो ये कह सकती हैं कि बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि ये हुक्म खुदा हो। समझ में आ रही बात? आप मैक्सिमम जो मसलन फर्ज करें, मसलन हाला मिन बाबे मिसाल अर्ज करूँ, आगा सिस्तानी ने फतवा दिया कि जी औरत हिजाब में अगर चेहरे पर जीनत ना हो तो चेहरा खोल सकती है। तो कोई आपको पूछे ये हुक्म खुदा है, यही हुक्म खुदा है, लोहे महफूज पर जो लिखा हुआ वो यही चीज लिखी हुई है, आप कहेंगे कि नहीं मुझे क्या पता, तो आगा सिस्तानी ने कहा है, यही कहेंगे ना। ये तो नहीं आप कहेंगे कि हाँ ये हुक्म खुदा है, मुझे क्या पता, तो आगा सिस्तानी को पता। हम गए आगा सिस्तानी के पास, क्या जी अगर ये जो आपने फरमाया है कि जी औरत जो है वो चेहरा खोल सकती है, कसम खाएं कि ये हुक्म खुदा है, कुरान लेकर आए, मंगवाएं कुरान, तो मैं कसम थोड़ी खा सकता हूँ। मैंने जितना कोशिश कर सकता था, मैं अपनी मैक्सिमम कोशिश के नतीजे में इस बात तक पहुंचा हूं कि बहुत ज्यादा इम्कान इस बात का है कि हुक्म खुदा यही हो। जो जो इम्कानात थे उनमें से सबसे ज्यादा इम्कान इस बात का है कि हुक्म खुदा ये हो कि औरत अगर जीनत ना हो चेहरे पर तो उसे छुपाना औरत के लिए नामहरमों से वाजिब नहीं है। अरे इसमें भी कुछ शर्त तो शुरू था, अभी मैं वो हिजाब के अहकाम तो नहीं चल रहे कि सारी शुरू और कयूद के साथ बयान करूँ, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए एक मिसाल दी है। दुरुस्त, बस तकलीद जो है वो मैक्सिमम आपको जो उसकी उड़ान है ना वो इतनी है कि वो आपको जन तक लेके जाती है और यकीन से निचले दर्जे पर रखती है आपको। इसकी ताबीर आसान यही हो सकती है कि यकीन तक नहीं पहुंचाती, 100% श्योरिटी नहीं देती आपको, उससे नीचे नीचे हैं आप। जबकि अकायद में 100% श्योरिटी चाहिए होती है, यकीन चाहिए होता है। आप कहें जी इमाम एहतमाल कभी ये है या हद ज्यादा इम्कान इस बात का कि इमाम होना चाहिए कोई ना कोई, ये बात नहीं चलेगी। आपका ये कि इमाम होना जरूरी है, फिर इमाम कौन है, इमाम की खसूसियात क्या हैं, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर यकीन चाहिए आपको। तो तकलीद यकीन तक पहुंचाती नहीं है, दुरुस्त, तो फिर कैसे जायज हो जाए तकलीद अकायद में और उसूल दीन में? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो तकलीद देती नहीं। हमें क्या चाहिए होता है उसूल दीन में? यकीन। इसीलिए अगर तौजील मसाइल हो आप लोगों के हाथ में, अगर नहीं है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, जो पहला मसला दिया हुआ है, पहले मसले में क्या लिखे उन्होंने, उसूल दीन में कतई उमूर में और मुसल्लमात में तकलीद नहीं होती, इसलिए कि बिलाखिर एक चीज जो कतई है, जहां पे कत यानी वो यकीन 100% श्योरिटी, उसूल दीन में कहते हैं हर मुसलमान के लिए उसूल दीन को अजरूए बसीरत जानना जरूरी है, दलील से जानना जरूरी है, सही ना? और जब दलील होगी तो वो ऑटोमेटिकली फिर यकीन आवर होगी। दलील यहां पे जो अजरूए बसीरत है, ये दलील मजबूत और मोहकम दलील कि जो आपको साबित करे कि खुदा का वजूद है, खुदा एक है, नबी की ज़रूरत है, नबी खातिमुल अंबिया हैं, आइमा की ज़रूरत है, इमाम की ज़रूरत है, खुदा आदिल है, कयामत होनी चाहिए वगैरह वगैरह। दुरुस्त, बस तकलीद यकीन तक नहीं पहुंचाती, और क्योंकि उसूल दीन में यकीन की ज़रूरत होती है लिहाजा उसूल दीन में तकलीद नहीं हो सकती, उसका वहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है। दुरुस्त, तकलीद तो नहीं हो सकती, अब करना क्या है? अब वही वाली बात जो इन्होंने कहा कि दलील के साथ आपको समझना है, यानी उसूले दीन रट्टे वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है, और समझना भी इस तरह से कि आप 100% श्योरिटी के साथ यकीन कामिल दुरुस्त, ऐसा यकीन आपके पास होना चाहिए कि जिसमें देखिए यकीन उस कैफियत नफ्स को कहते हैं कि जिसके अंदर आप दूसरी साइड में 1% भी एहतमाल ना दें। मतलब इस वक्त 5:15 हुए हैं, दिन है या रात? अगर अगर कोई कहे आपको नहीं जी रात है, तो आप क्या कहेंगे? कहे जी सूरज ही नजर नहीं आ रहा, फिर क्या कहेंगी? कुछ नजर आए या ना आए, दिन है, हमें यह पता है कि दिन है, सूरज नजर आए आए ना आए ना आए, इसलिए कि अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ, रात का वक्त नहीं हुआ, तो बस दिन ही है, कड़ी भी अलबत्ता खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी आप 1% भी इम्कान नहीं देंगी अभी बैठे बैठे कि इस वक्त शायद रात हो गई हो, 1% इस कनाअत नफ्स, इस नफ्स की बेनियाजी के जिसमें आप 1% भी एहतमाल ना देते, इसको कहते हैं आप मंजिल यकीन पर फायज हैं। हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन, और फिर दूसरे वो उसकी कैटेगरीज अपनी हैं, लेकिन बिलाखिर इसको यकीन कहते हैं कि जो तरफ मुकाबिल जो भी इम्कान होता है उसके बारे में आपका 1% भी उसकी गुंजाइश मौजूद ना हो। आप मर्द हैं या औरत? अगर कोई कहेंगे आप मर्द हैं, आप वो मुझे याद है, ये एक इख्तलाफ भी है, किस्सा मुझे याद आ गया आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, एक इख्तलाफ भी है, पूरी जुजियात के साथ याद नहीं लेकिन हल्का फुल्का शायद मतलब समझा दूंगा आपको कि यकीन क्या होता है। कि ये इख्तलाफ है हमारे फुका के दरमियान के उसूल दीन में दलील होना ज़रूरी है या बगैर दलील के खाली यकीन हो काफ़ी, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है आपको यकीन है दलील आपके पास नहीं है, कोई आपसे पूछे दलील क्या है तो आप कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं मानती हूँ और 110% मानती हूँ, इतना यकीन है मुझे, दुरुस्त? तो ये हो सकता है बाज़ औक़ात। तो ये उसूल दीन के बाब में ये दो तरह के फतवे हैं, आगा खुई आगा सिस्तानी ये दलील के कायल हैं, लेकिन आगा खुमैनी दलील के कायल नहीं थे, कहते हैं यकीन हो काफ़ी है, दलील ना भी हो चलेगा, दुरुस्त? इसी तरह कोई मुश्तैद थे, उनका भी नज़रिया ये था कि दलील के साथ होना चाहिए। तो एक दफ़ा वो गुजर रहे थे किसी खेत से, तो ऐसे ही पता नहीं उनको कौन सी रग फड़की उनकी, तो वो किसान जो काम कर रहा था उन्होंने उसको रोक के पूछा, भाई तुम तकलीद करते हो? कहा हाँ जी करता हूँ। कहा किसकी करते हो? अब मुझे नाम याद नहीं है कि कौन थे, बराखे जो भी नाम लिया वो यही थे जो पूछ रहे थे। कहा कि अच्छा तो ये बताओ कि तुम अल्लाह को मानते हो, यकीन है तुम्हारा अल्लाह के पास? कहाँ है। कहा कि दलील बताओ, तुम जिसकी तकलीद करते हो वो तो दलील के कायल है कि दलील के साथ यकीन होना चाहिए, तो दलील बताओ। कहता दलील तो नहीं है मेरे पास। कहता है फर्ज करो कोई आके तुम्हें कहे अल्लाह नहीं है, कहते जो बेलचा मेरे हाथ में ना इसी से उसका सर फाड़ दूंगा। तो इतना यकीन होता है, सुन मैंने जो मेरे जहन में आया और जो सुना हुआ मेरे, तो उन्होंने बाद में अपना नजरिया चेंज कर दिया था इसके इस यकीन को देख करके, ये भी हो सकता है कि बगैर दलील के इतना कभी यकीन हो किसी के दिल में। तो मेरा ख्याल है अगर कोई आपको आके कहे आप मर्द हैं तो आप भी बेलचा उठा के सर ही फाड़ेंगे, और क्या कर सकती हैं, इतना यकीन आपको इस बात पर है कि आप औरत हैं, दुरुस्त? आप 1% भी इम्कान नहीं देती इस बात का कि आप मर्द हो, इसको कहते हैं यकीन। उसूल दीन में ये चाहिए होता है कि आपको मतलब खुदा है, खुदा के ना होने का 1% भी इम्कान ना हो आपके नफ्स में। अगर आप खुद डाउटफुल हैं, पता नहीं खुदा है पता नहीं नहीं है, तो इसका मतलब है आप यकीन की मंजिलत पर नहीं है, दुरुस्त? बस उसूल दीन में तकलीद इसलिए नहीं होती है कि तकलीद इंसान को जन तक पहुंचाती है, और उसूल दीन में इंसान को यकीन चाहिए होता है, दुरुस्त? अब मसला यह है कि ये जो यकीन है अब जैसे इन्होंने कहा कि अगर तकलीद नहीं तो फिर जो मर्जी नजरिया बना लें, जिस चीज़ के ऊपर मर्जी चिपक जाए और उसका यकीन पैदा कर लें, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल हमें कुरान और रिवायात के जरिए दीन सीखना है। देखें, दीन बनाने के लिए हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना है। दीन की किताब, बस मेडिकल की किताब जो डॉक्टर हजरात पढ़ते हैं, कोई ना कोई प्रिस्क्राइब बुक होगी ना कि जी ये बुक पढ़ाई जाती है। एक ज़माने तक अबू अली सीना की किताब पढ़ाई जाती थी, अभी भी पता नहीं क्यों पढ़ाई जाती है ना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिलाकर एक प्रिस्क्राइब बुक होती होगी कि जी ये हमारा कोर्स है। हमें तिब इस किताब से लेनी है, मैगजीन से और इंटरनेट से और इधर उधर के टोटकों से हमें तिब नहीं बनानी, दुरुस्त। ये और बात है कि तिब तो हम इधर उधर से नहीं बनाते, लेकिन दीन ज़रूर बना लेते हैं। तो सबसे मज़लूम चीज़ हमारे पास दीन है, सबसे मज़लूम, जिसका दिल चाहता है वो उसके साथ रस्सा कशी शुरू कर देता है और किस्मत आजमाई शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है। तो हमें जो दीन लेना है वो हमारे लिए प्रिस्क्राइब है कि हमें दीन कुरान और सुन्नत से लेना है, रिवायात अहले बैत से लेना है, हमें इधर उधर नहीं जाना। अगर ये एक चीज, दूसरी चीज, एक और बात आपकी खिदमत बताऊं कि असल जो उसूल दीन है वो सारे के सारे अकली हैं। वजूद खुदा अकली, तौहीद खुदा अकली, अदल इलाही अकली, नबूवत अकली, इमामत अकली, कयामत अकली। खुद हमारी अकल, वो जो कहते हैं ना मजबूत दलील चाहे, लेकिन दलील के लिए जरूरी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा ऐसा फलसफी दलील हो कि खुद आपकी भी समझ में ना आ रही हो, बस आपने एक रट्टा मार लिया, किसी ने भी पूछा टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, आपने फर 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 बता दिया, आपसे कोई पूछना चाहे तो आप कहेंगे भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, जितना पता था वो मैंने उगल दिया सारा, इसकी भी जरूरत नहीं है। अमीरुल मोमिनीन के जुमलात में छोटी छोटी दलीलें हैं, जिस तरह कदम के निशान किसी चलने वाले के वजूद पर दलालत करते हैं, या गोबर जो पड़ी हुई है वो दलालत करते हैं कि यहां से कोई ऊंट गुजरा है मसलन, तो इतनी बड़ी कायनात ये दलालत करती है कि इसको चलाने वाला भी कोई है। जब कदम के निशान खुद से नहीं बन सकते तो इतनी बड़ी कायनात खुद से कैसे बन सकती है, दुरुस्त। या वो चरखा चलाने वाली बुढ़िया, जो रसूल खुदा का वाक्य मशहूर है कि उससे पूछा कि भाई खुदा के वजूद पर क्या दलील है, उसने अपने चलाते चलाते चरखा हाथ रोक दिया, कहा ये इतनी सी मशीन है, उस जमाने की मशीन इतना ही है, कहते ये इतना सा चरखा जब मुझ बुढ़िया के चलाए बगैर नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा आलम, इतनी बड़ी कायनात, इतने नज्म के साथ बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसके लिए कोई फलसफी दलीलों में पढ़ना और लंबे चौड़े कहानियां सुनाना उसकी भी जरूरत नहीं है, इतनी भी दलील हो तो काफ़ी है। लेकिन अकीदा क्या बनाना है वो हमें आउटलाइन कुरान और रिवायात से मिलेगी, वो हमने इधर उधर से नहीं मिलनी, वो हमने इंडियन फिल्मों से नहीं लेनी, वो हमने फेसबुक और ट्विटर और नामी दो नाम अला और बला, ये जो सब कुछ इतने वसाइल आजकल चल रहे हैं उससे नहीं लेनी है। देखिए, बात चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं, वही जो अमीरुल मोमिनीन का जुमला भी नकल किया, कलिमत हक व युरादु बिहल बातिल, शक्ल में इतनी प्यारी आपको नज़र आएगी कि आप कहेंगे ये वाकई क्या बात कही है, लेकिन उसकी गहराई में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो सामने इतनी खूबसूरत बात नज़र आ रही है उसकी गहराई में आपको कितनी खराबियां नजर आएंगी। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो अब मैं और आप जो है मुमकिन है अवाम जो है इनको, इस गुत्थियों को सॉल्व ना कर सके, उसको समझने के लिए बिलाकर आपको रुजू करना पड़ेगा उलमा की तरफ, मगर उलमा दलील के जरिए आपको समझाएंगे। अगर वजूद खुदा की बात है जो ये अभी छोटी छोटी दो तीन चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश की, ये दलालत करती हैं कि कायनात का चलाने वाला कोई रब है, बगैर चलाने वाले की कायनात नहीं चल रही, तो एक ऐसी ऐसी ज़ात और एक ऐसा वजूद मौजूद है कि जो इस पूरी कायनात का हाकिम और मालिक है, जो इसको चला रहा है। उलमा का जो इस उसूल दीन के अंदर रोल है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो फतवों की तरह नकल नहीं करेंगे, जी आगा सिस्तानी ने कह दिया, अब हमारे पास चूचरा की गुंजाइश ही कोई नहीं, आपने जितना चूचरा करना है आप करें, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको करनी है अकायद के मैदान में आप करें, समझने और सीखने के हद तक कुफर का सबब नहीं बनती है ये, भाई आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप किसी से समझना चाह रहे हैं कि जी एक खुदा का होना क्यों जरूरी है, दो हों तो क्या होगा, आप अब उससे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि जी मतलब फर्ज करें दो हम एक बिल्कुल एक जैसे ट्विंस खुदा हम तसव्वुर करें, वो खुदा जो ट्विंस बच्चे पैदा करते हैं तो वो खुद भी ट्विंस तो हो सकता है ना, हम बिल्कुल एक जैसी खसूसियात वाले दो मान लें और दोनों में एक एग्रीमेंट हो जाए ताकि एक दूसरे के साथ क्लैशेज ना हो। जिस तरह ये थानों की हदूद नहीं मुअय्यन की हुई, ये हदूद इस थाने की तो वो हदूद उस थाने की, ताकि इनकी आपस में ही झगड़े ना चलते रहें कि तुम्हारा केस है तो ये मेरा केस है, तो ये मेरा केस है तो ये तुम्हारा केस है। इन्होंने भी अपनी हद हदूद मुअय्यन कर ली। मतलब फ़र्क करें, एक कहे तुम दिन के खुदा, दूसरा कहे तुम रात के खुदा, इनमें आपस में एग्रीमेंट हो गया, दिन के सारे उमूर इस खुदा के हाथ में, रात के सारे उमूर इस खुदा के हाथ में। अब इसने जो तसव्वुर किया दो खुदाओं को, तो आपके ख्याल में क्या मुशरिक हो जाएगा बंदा जो समझना चाह रहा है और सीखना चाह रहा है कि क्यों एक होना जरूरी है खुदा का? ये शिर्क नहीं लाता, शिर्क अकीदा लाता है। ये अकीदा नहीं है उसका, ये एजम्पशन है सिर्फ, दुरुस्त? ये अकीदा नहीं है, ये कुफ्र नहीं लेकर आएगा, इसको काफिर और मुर्तद नहीं बना देगा, बल्कि ये होना चाहिए, ये सीखने का मरहला इसके बगैर हो ही नहीं सकता। तकलीदी चीज तो नहीं है, मैंने कहा जी खुदा एक, आपने कहा चश्म ठीक है जी एक, आज से एक हो गया, अब आपके हलक से उतरा हो कि ना उतरा, 10 सवाल, ये हमारी आवाम की ये मुश्किलात है, 10 सवाल उनके जहन में होंगे लेकिन बस अब वो एक ही मानना है, वो 10 के 10 सवाल उनको कहीं और लेकर जा रहे होंगे लेकिन मानेंगे एक ही। ये तकलीद है, ये नहीं होनी चाहिए और सही भी नहीं है। यहां पर जायज नहीं समझा दिया कि सही नहीं है, ये नहीं, काफी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आपकी गर्दन से उतारती नहीं है, दुरुस्त? इसके लिए आपको पूरी बसीरत से ये बात समझनी है कि खुदा का होना क्यों जरूरी। अगर एक ना हो तो क्या बेस्ट, वो बाज़ उलमा इस बात के कायल हैं, ये काम ना करें कि शुभा तो डाल दें लोगों के जहन में, फिर उसका जवाब ही ना दें। तो ये दो खुदाओं वाली मैं बात इसको कंप्लीट कर दूं कि अगर ये फर्ज किया जाए कि दो बिल्कुल ट्विंस खुदा हों, एक जैसी कुदरत, एक जैसी ताकत, एक जैसी खसूसियत वाले, और दोनों में एक एग्रीमेंट हो जाए कि एक खुदा दिन के उमूर अंजाम दे, एक खुदा रात के उमूर अंजाम दे, या एक खुदा खुदाए शर, एक खुदा खुदाए खैर, जो बाज़ लोगों का ये नज़रिया है खुदाए शर और खुदाए खैर का, दुरुस्त? तो इसमें क्या हर्ज है? दो मान लें तो क्या जाएगा इसमें, क्या जाएगा बताएं आप लोग, बताएं चलें क्या जाएगा? आप लोग तो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप आपको हो तो हमें, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है भाई? हमें तो दो खुदा चाहिए थे कि जिनका क्लैश ना हो, क्योंकि कुरान ने कहा ना लौकान अफीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा एक से ज्यादा खुदा हो तो लफसद होता, कायनात फासिद हो जाए। हम ऐसा तसव्वुर पेश करें कि दो खुदा भी हो जाए और कायनात भी फासिद ना हो, प्यार मोहब्बत से जिस तरह मियाँ बीवी घर में रहते हैं, ये भी घर में अपने अपने काम चलाएं, क्या हर्ज है इसमें? नहीं, बस जो हदूद हैं उसके हिसाब से हदूद करें, सुबह के अवामिर जो हैं वो इस खुदा के मानेंगे, रात में जो बातें होंगी वो उस खुदा की मानेंगे। वो तो मियाँ बीवी है ना, इसलिए अमन से नहीं रह सकते, वो मियाँ बीवी थोड़ी हैं, वो तो दोनों खुदा होंगे, एक दूसरे की मियाँ के अंदर कोई हम रिश्ता है जौजिए थोड़ी इजाद करें कि जहाँ मियाँ बीवी बने वहीं जंग शुरू हो गई, ये तो नहीं करना हमने, दोनों को खुदा ही रहने देना हमने। कैसे भाई, जब हदूद आपने तय कर ली तो फिर क्यों क्लैश आएगा भाई? दिन वाला रात में दखालत नहीं करेगा, तय कर लिया रात ओ कौन सा बीच का हिस्सा मेरी बहन, या दिन है या रात है, दरमियान में तो कोई चीज ही नहीं है भाई। देखें खुदा ये तो एक एक खुदा में भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक खुदा हसद करना शुरू कर दे लोगों से, मखलूक से, उसने देखा मसलन मैंने अली को बनाया, अमीरुल मोमिनीन को मैंने बनाया और लोग उसी इन्हें ऐसा बना दिया कि लोग उसको खुदा मानने लगे, हसद पैदा हो गया अमीरुल मोमिनीन से, क्यों नहीं हो सकता हैं? आपस में बैठ के तय करेंगे टेबल टॉक। अरे अभी हम कुरान से थोड़ी बात कर रहे हैं, अभी तो हम मुसलमान हुए ही नहीं, तो मुसलमान होना चाह रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो जरूरत क्या है दूसरे के पास? आपने अपना काम मुश्किल हल करनी है ना आपने, नहीं है सही है उस हद का वो है, लेकिन दूसरी हद का मतलब दिन में आपका कोई काम पड़ा तो आपने इस खुदा के पास चली गई, अब ये तो जरूरी नहीं कि दिन में काम पड़े, कोई काम रात को आ गया तो अब आप उस खुदा के पास जाएंगी, دن میں اس خدا کو پکاریں گی دعا، ظہر اور فجر کی نماز میں اس خدا سے دعا مانگیں گی، مغرب عشاء کی نماز میں اس خدا سے دعا مانگیں گی. کتنی پرسکون زندگی ہے، سکون نہیں مل رہا؟ یہ جو آپ کو پرسکون نہیں لگ رہی، وہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں بچپن سے گھسی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو پرسکون. اللہ اتنی پرسکون زندگی. تو دن والا سزا دے گا، رات والا تھوڑی دے گا آپ کو، اس نے دن والے میں تھوڑی ٹانگ مارنی ہے. بابا دیکھیں، میں نے دن میں جرم کیا، قتل کر دیا، درست؟ تو دن والا خدا ہے جو مجھے سزا دے گا. اب وہ آج کے دن دے، کل کے دن دے، پرسوں کے دن دے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر یہی قتل میں رات کو کروں گا تو اب یہ سزا نہیں دے سکتا مجھے. ایگریمنٹ ہمارا ایسا کہ وہ والا اب سزا دے گا. ابھی اللہ کو تو پہلے ایک کریں، پھر ہو سکتا ہے ہم کچھ رسول بھی تھوڑے سے اور نکال لیں. بیلچا بیلچا لاؤں، منگواؤں بیلچا، منگواؤں دفتر سے. عرض خدمت یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت آپ لوگوں نے تب آزمائی کر لی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا کے لیے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہم امام کی بات کرتے تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو تو ہم امام نہیں بناتے تھے، یہی تو ہمارا ڈسپیوٹ چل رہا ہے ان بھائی لوگوں سے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایرا غیرہ کیسے بیٹھ سکتا ہے اس مسند پر جو خلافت رسول کی مسند ہو، اس کے لیے وہ ہو کہ جو رسول جیسا ہو، درست نا؟ لہذا ہم اٹھا کے امیر المومنین کو بٹھا دیتے ہیں، درست؟ اسی طریقے سے خدائی کے مرحلے پر جس ذات کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، تو آپ کے خیال میں ہر ایرا غیرہ خدا بن سکتا ہے؟ یہ گائے بھی خدا ہے تو وہ بندر بھی خدا ہے تو وہ ہاتھی بھی خدا ہے تو وہ بت بھی خدا ہے تو وہ سورج بھی خدا ہے تو وہ آگ بھی خدا، جس کو مرضی آپ خدا بنا دو. یا اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کرائیٹیریا ہونا چاہیے نا. انہی کرائیٹیریا میں سے سب سے بڑا ایک کرائیٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا محتاج نہیں ہوتا، اس کے اختیارات کے اندر حد بندی نہیں آ سکتی. جہاں حد بندی آئے گی نا، وہ خدائی سے ساکت ہو جائے گا. اب ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ہے تھوڑا ایک مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں. یہ بحث عقائد کی طرف چلی گئی، لیکن بہرحال سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، آئندہ کبھی کام آئے گی آپ کو. آپ نے اگر کہیں سنا ہو کبھی واجب الوجود اور ممکن الوجود، ان دو چڑیوں کا نام سنے کبھی؟ سنا ہے نا، واجب الوجود اور ممکن الوجود. خدا کی ذات ہمیشہ واجب الوجود ہوتی ہے. واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حد و حدود نہیں ہوتی. جہاں حد و حدود آئی، وہ واجب سے تبدیل ہو کر بن جائے گا ممکن، اور ممکن وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں آتا ہے، درست؟ ممکن اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں آئی ہو. عدم سے وجود میں آنے کا لازمہ کیا ہے؟ جب وہ عدم تھی اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں پر حدود حد آ جاتی ہے، درست؟ خدا واجب الوجود ذات کو کہتے ہیں ہم. یعنی جو سسٹم، جو طریقہ کار ہوتا ہے نا علمی بحث کا، اس میں پہلے خدا کو نہیں ثابت کرتے، پہلے واجب الوجود کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر ایک تاج بناتے ہیں کہ واجب الوجود کا تاج کیسا ہوگا، پھر اس کو لے جا کے خدا کے سر پہ فٹ کرتے ہیں، درست؟ اس کے تاج کا ایک نگینہ یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر حد و حدود نہیں آ سکتی. اب جو دن والا خدا ہے اور جو رات والا خدا ہے، دن والا خدا رات والے خدا کے کاموں میں ٹانگ مار سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی حد آ گئی، اس کا مطلب ہے اس کے اندر حد آ گئی. پھر اگر یہ چاہے کہ کوئی کام مثلا فرض کریں، اس کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آج چاند یہ نکالے، نکال پائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کام میں محتاج ہے کہ اس سے اجازت لے. तो जो मोहताज हुआ करता है, जिसके अंदर हद हदूद हुआ करती हैं, वो वाजिबुल वजूद नहीं हो सकता, वो मुमकिनुल वजूद होता है, और मुमकिनुल वजूद मखलूकात हुआ करती हैं, वो खालिक नहीं हो सकता। समझ में आई बात? पता चला कि ये एग्रीमेंट क्यों नहीं चलता? समझ में आ गई ना? हो खूब, ये तो इस एतबार से ऐसा नहीं है कि तकलीद ना होने का मतलब यह कि अब आप आज़ाद हैं, जो नजरिया मर्जी बनाएं, आप बुत परस्ती का नजरिया बना लें, आप जो है मसलन आतिश परस्ती का नजरिया बना लें, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इस नजरियात बनाने में हम बाउंड हैं कुरान और हदीस के, जैसा कुरान और हदीस ने तसव्वुर दिया हमें, हमें वो वैसा खुदा और वैसा रसूल और वैसा इमाम और वैसी कयामत और वैसी अदालत और वैसी खुलासा उसूल दीन को मानना है। बेस इसकी रिवायात और आयात बनती हैं, दुरुस्त। मुंतज ये रिवायात और आयात बनती हैं, फिर ये इसके ऊपर हमारे पास अकली दलाइल होते हैं, और उन अकली दलाइल की सपोर्ट की वजह से, बल्कि असल दलील अकली ही होती है इनके अंदर, खासतौर पे इन पांचों उसूल दीन में, कि जो साबित करती है कि खुदा है, खुदा वाहिद है, खुदा आदिल है, नबूवत होनी चाहिए, इमामत होनी चाहिए, कयामत होनी चाहिए। अकल है जो इसको बयान करती है, और उस अकल को सपोर्ट करती हैं ये आयात और रिवायात, फिर दुरुस्त। लिहाजा ये हमें आजाद, यानी तकलीद ना होना आजादी नहीं है।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.